मुनि विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित गुरुदेव भारती तीर्थी महाराज के द्वारा संपूरित पंचदशी का स्वाध्याय क्रम चल रहा है। नवम प्रकरण ध्यान दीप प्रकरण में 21वें श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया था। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ था, 20वें श्लोक में कहा गया था कि ब्रह्म तत्व का वर्णन यद्यपि महावाक्यों के द्वारा शास्त्र में किया ही गया है, परंतु महावाक्य श्रवण कर लेने मात्र से परमात्मा का साक्षात्कार यानी अपरोक्ष अनुभव नहीं हो जाता है। परोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अविचार्य ने दुर्बोधम करके बताया था, विचार के बिना आत्मरूप से उसको प्रत्येक आत्मरूप से साक्षी रूप से समझ पाना जरा दुर्बोध है, ज्ञान होना कठिन है। तब एक प्रश्न खड़ा किया गया था कि कारण क्या है, वो दुर्बोध क्यों बोल रहे हैं आप उसको। देखो, दो बात होती हैं कि जो यथार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान प्रमाण वस्तु के अधीन होता है, माने किसी प्रमाण के द्वारा उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। अज्ञात ज्ञापक शास्त्र होता है ना, तो शास्त्र उसका प्रमाण है और उस शास्त्र प्रमाण से वो ज्ञान होगा। परंतु यहां पर बड़ी सुविधा यह है कि प्रमाणस्य सद्भावात्, प्रमाण रूप जो शास्त्र है और शास्त्र में तत्वमसी महावाक्य है, ये हमारे सामने है। उपनिषद उठाओ, तत्वमसी महावाक्य पढ़ो, अहम ब्रह्मास्मि पढ़ सकते हो, किसने रोक लगाई है? अयम आत्मा ब्रह्म पढ़ो, किसने मना किया है? तो प्रमाण हमारे सामने उपस्थित है, आप पढ़ सकते हैं स्वतंत्रता से, आराम से पढ़ो। और दूसरी बात, जिस ब्रह्मात्मिक के बोध को महावाक्य से प्राप्त किया जाता है, वो ब्रह्म तत्व आत्मा रूप से विद्यमान है ही है। शास्त्र तो ब्रह्म को आत्मा नहीं बना देगा, वो तो ब्रह्म तो पहले से ही आत्मा ही है, अपना स्वरूप ही है, कोई शास्त्र के कहने से तो हो नहीं जाएगा। तो जिसको शास्त्र प्रमाणित करता है, वो उस प्रमाण का विषयभूत जो आत्मिक के आत्मा एकता है, वो भी उपलब्ध ही है, पहले से ही विद्यमान है। आज नई आत्मा ब्रह्म का यज्ञ हो जाए ऐसा तो नहीं है, तो ब्रह्मात्मिक के पहले से सिद्ध है। और ब्रह्मात्मिक की सिद्धि को, एकत्व को बताने वाला शास्त्र का महावाक्य हमारे सामने उपलब्ध है ही है, तब ऐसी स्थिति में बताइए इसमें दुर्बोधता का कारण क्या है? विचार ने दुर्बोध बताया गया है कि विचार के बिना इसको जानना कठिन है, तब इसमें कठिनता किस बात की है? शास्त्र का महावाक्य उपलब्ध है, परमात्मा एक के स्वतः सिद्ध तत्व है, तब ऐसे स्थिति में कठिनता किस बात की है? उसका उत्तर दिया था 21वें श्लोक में, देहाद्यात्मत्व विभ्रांतो जाग्रत्याम न हटात पुमान ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम क्षमते मंदधित्वतः। ये कारण है, ये जो प्रश्न उठाया है, कहते हैं कि वो कठिन किस लिए है, दुर्बोध किस लिए है? बोले ठीक है भाई, शास्त्र भी उपलब्ध है, महावाक्य बिल्कुल सामने है और ब्रह्मात्मा एक के भी सिद्ध है ही है, परंतु दुर्बोध इसलिए है कि जिसमें जागना चाहिए उसमें नहीं जाग रहे, जिसमें सोना चाहिए उसमें जाग रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, तस्याम जागृति संयमी येष्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अंतर इतना ही है, सब उल्टा हो रहा है। कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, रात्रि अंधकार जो होता है सबके लिए रात्रि ही होती है कि नहीं है? पर कहते हैं संयमी उसमें जाग रहा है, अर्थात जो अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि है, जिस अज्ञान अंधकार में अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पा रहा, देख नहीं पा रहा, संयमी पुरुष उसी में जाग रहा है। जिस शरीर में व्यक्ति अंधा हो रहा है, जिस शरीर के सिवाय उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, संयमी पुरुष उस शरीर में रह करके ही आत्मा का दर्शन कर रहा है। तो सारी दुनिया जिस देहात्म भाव में जी रही है, जिस निशा में जी रही है, जिस अज्ञान में जी रही है, शरीर मैं हूं ऐसा करके ही पड़ी हुई है, जबकि शरीर मैं नहीं। एक विचारशील विचक्षण जो पुरुष होता है वो उस आत्म स्वरूप में जाग रहा है, वो निशा में ही जागा हुआ है, शरीर में रहते हुए भी वो सोया हुआ नहीं है, देहात्म भाव में नहीं है, शरीर में रहते हुए भी वो आत्म भाव में है। और येष्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जो भूत जिसमें जाग रहे हैं यही है अविद्या का कार्य। वो शरीर में ही अपने को जागना समझते हैं, जिस जागृति को यहां पर बताया गया आप देख लीजिए। यहां पर ऐसा लगता है कि गीता को ही ध्यान में रख करके आचार्य ने श्लोक लिखा है। अज्ञानी पुरुष जिस शरीर में देहात्म भाव में जाग रहे हैं, अरे वो संयमी पुरुष उसमें सोया हुआ है, उसको देहात्म भाव नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में जागा हुआ है। परंतु अज्ञानी पुरुष की स्थिति यह है, देहाध्यात्मत्व विभ्रांतो जागृत्याम पुमान न हठात ब्रह्मात्म न विज्ञान तुम क्षमते। जो ऐसा पुरुष है देहात्म विभ्रांति में ही जाग रहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति येष्याम जागृति भूतानि, नीचे वाली पंक्ति लगा लो आप, गीता में कहा येष्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अरे भूत जिसमें जाग रहे हैं वो किसमें जाग रहे हैं? वो देहात्म आत्मभाव में जाग रहे हैं, देहादि आत्मत्व विभ्रांतो, इसी भ्रांति में ही जागे हुए हैं, हकीकत में तो सोए हुए हैं, और उस अज्ञान नींद से जागने के लिए श्रुति का मंत्र आया कट श्रुति का, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो अविद्या नींद से, उठो अपने स्वरूप में जागो। लेकिन जो अविद्या नींद में ही पड़े हुए उसी को जागृति मान ली है, इस श्लोक का अर्थ है। देहात में आत्म शरीर में जो आत्म भाव है तो भ्रांति ही, शरीर कभी मैं हो नहीं सकता, मेरा और शरीर का कभी लक्षण मिल नहीं सकता, दृग दृगेव और दृश्य दृश्य ही रहेगा कि नहीं, दिग दृश्य विवेक आपने पढ़ा होगा, दृष्टा दृष्टा ही रहेगा, दृश्य दृश्य ही रहेगा, शरीर दिखने वाले हैं मालूम पड़ने वाले हैं, जुदा करके समझ में आते हैं कि दृश्य है, दृश्य दृश्य ही रहेगा, और जो दृष्टा है वो सदैव दृष्टा ही रहेगा, देखने वाला ही रहेगा, कोई लक्षण मेल नहीं है, दृश्य निरंतर परिवर्तनशील है और दृष्टा निरंतर अखंड दृष्टा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तनीय तत्व है। लेकिन किसी को ऐसी भ्रांति हो गई है कि जो परिवर्तित होने वाला दृश्य मात्र है उसमें तो आत्मा बुद्धि कर ली और उसी में उसी को जागना मान लिया है, विभ्रांति में ही उसका जागरण है। येष्याम जागृति भूतानि, भूत जिसमें जाग रहे हैं, इसलिए उसी विभ्रांति में जो जागा हुआ है अर्थात देहात्मा भाव में ही पड़े हुए व्यक्ति हैं, जागृति इसलिए बोल रहे हैं कि मंद बुद्धि वाले लोग देहात्मा भाव किए हुए उनको कितना ही समझाओ वो फिर भी शरीर को आत्मा ही मानेंगे, उनके दिमाग से निकलता ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं। और की बात छोड़ो बाबा, रात और दिन हम लोग 365 दिन स्वाध्याय करते हैं, तो क्या 365 दिन में प्रतिदिन के 24 घंटे हमारी निष्ठा बनी रहती है? कहीं देहात्म भाव तो नहीं जाग जाता है? तो जब हम सदृश साधकों के भी सोया हुआ देहात्म भाव जाग जाता है, तो फिर ऐसे मंदबुद्धि लोगों की बात सोचिए जिनको ये वेदांत श्रवण करने को ही न मिलता हो, वो तो उसी में जगे हुए हैं, तो उनके लिए तो यह कठिन है ही है। अरे उपनिषद भी उपलब्ध है, महावाक्य उपलब्ध है, और ब्रह्मात्म्य के तत्व की सिद्धि स्वतः सिद्ध है, केवल भ्रांति निवृत्ति मात्र होनी है। सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी सबको ज्ञान इसीलिए नहीं होता है, उसका उत्तर यही दे रहे हैं। ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम हठात न क्षमते, एकाएक ब्रह्म मेरी आत्मा है ये विशेष बोध है नहीं होता है। क्यों? मंदधित्वतः, मंद बुद्धि होने के कारण और देह में आत्मभाव की भ्रांति में पड़े हुए होने के कारण। दो चीज है, देह में आत्मभाव की भ्रांति क्यों हो रही है? बुद्धि मंद है, साधना के द्वारा अतिक्षण नहीं की गई है। बता रहा था कि दृश्यते तो गृहया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, चित्त शुद्ध हो बुद्धि निर्मल हो तो उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। मत्वा धीरो हर्ष शोको जाति कहा, लेकिन मंद बुद्धि होने के कारण इस प्रकार आत्मा परमात्मा की एकत्व का जो विशेष विज्ञान है अर्थात अप्रोक्ष ज्ञान है। विज्ञातम का अर्थ होगा यहां पर अप्रोक्ष ज्ञान, आत्मा रूप से जो अनुभूति है ब्रह्म तत्व की वो नहीं होती है, इसलिए कहा गया था दुर्बोधम अविचारिण। 20वें श्लोक के चतुर्थ पाद पर यह प्रश्न खड़ा हुआ था कि दुर्बोध क्यों कहा गया, इसलिए दुर्बोध कहा गया है कि वो मंद बुद्धि वालों के लिए ये बात समझना कठिन है। फिर एक प्रश्न निकला, ननो तरीहि देहेन्द्रियादि गोचरस्य द्वैत भ्रमस्य सद्भावात् अद्वितीय ब्रह्म गोचरम प्रोक्ष ज्ञानम अपि न उदयादिति आशंक्य। अच्छा जी, आपने कहा कि ये जो देहात्म भाव में जागे हुए लोग हैं उनको एकाएक ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव नहीं होता, तब ये बताओ कि देह इंद्रियादि गोचर से द्वैत भ्रम से, ये जितना भी द्वैत है यद्यपि है तो भ्रम, सत्य तो अद्वैत ही है, तो जितना भी द्वैत है वो भ्रम मात्र है। देह इंद्रियादि गोचर से, पर वो देह भ्रम क्या है? द्वैत जगत जो शरीर इंद्रियों आदि के द्वारा विषय बन रहा है, गोचर हो रहा है, जितना भी द्वैत है प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मालूम पड़ रहा है, उसका सद्भाव है, सब जानते हैं, द्वैत सबको प्रत्यक्ष है, द्वैत अपरोक्ष है, सबको देख रहे हैं प्रत्यक्ष, इसलिए। और अद्वितीय ब्रह्म गोचरम प्रोक्ष ज्ञानम अपि न उदयात, तो ऐसी स्थिति में जब देह इंद्रिय गोचर जो द्वैत ब्रह्म है ये तो सबको विद्यमान है, सद्भाव है इसका सबके सामने होने पर, जो अद्वितीय ब्रह्म गोचर प्रोक्ष ज्ञान है, अद्वितीय ब्रह्म को बताने वाला जो प्रोक्ष ज्ञान है, वो प्रोक्ष ज्ञान भी कैसे उदय होगा? क्योंकि प्रोक्ष ज्ञान से पहले ये भ्रम विद्यमान है कि नहीं? ज्ञान तो बाद में, भ्रम तो पहले से ही स्वतः सिद्ध है, अनादि काल से चला आ रहा है। शरीर इंद्रियों का विषय भूत जो सारा द्वैत जगत है जिसमें सत्य बुद्धि हो रही है, भले ही शास्त्र की दृष्टि से भ्रम है, पर यह भ्रम नया तो पैदा नहीं हुआ, ज्ञान तो अब होगा। वेदांत श्रवण करने से होगा, अवांतर वाक्य पढ़ने से सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म ये ज्ञान होगा, पर अवांतर वाक्य या वेद शास्त्र को नहीं जाना उसके पहले से भी ये द्वैत भ्रम तो मौजूद है, पहले से ही विद्यमान है। तो जब पहले ही द्वैत ब्रह्म विद्यमान है, इसका सद्भाव है, तो अद्वितीय ब्रह्म गोचर जो परोक्ष ज्ञान है, उस ब्रह्म के रहते हुए परोक्ष ज्ञान भी कैसे पैदा होगा, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भ्रम तो पहले ही पड़ा हुआ है, तो भ्रम के रहते हुए परोक्ष ज्ञान भी कैसे हो जाएगा। तब उसका बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं यहां पर, अपरोक्ष द्वैत ब्रह्म से यहां पर देखो थोड़ा सुधार करना पड़ेगा आपके। यही सबकी पंचदशी यही वाली है क्या? क्या शब्द है? परोक्ष द्वैत ब्रह्म से प्रोक्षात परोक्ष अद्वैत ज्ञान अविरोधित्वात श्रद्धावत पुंस शास्त्रात परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यत एव इतिहास है। परोक्ष द्वैत भ्रमस्य, द्वैत भ्रम परोक्ष है कि अपरोक्ष है? अपरोक्ष हो रहा है ना, मालूम पड़ रहा है सबको। यहां लिखा परोक्ष द्वैत भ्रम, थोड़ा यहां सुधार लो, उसमें आ और लगेगा। अपरोक्ष द्वैत भ्रमस्य, जो द्वैत का भ्रम है वो तो अपरोक्ष है, सबको प्रत्यक्ष मालूम पड़ रहा है। और परोक्ष अद्वैत ज्ञान अविरोधित्वात, जो अपरोक्ष द्वैत भ्रम है वो परोक्ष अद्वैत ज्ञान का विरोधी नहीं है। वाक्य बहुत विलक्षण है, जो द्वैत भ्रम है वो अपरोक्ष हो रहा है, ये बात ठीक है। और जो अद्वैत ज्ञान है वो कैसा है? वो परोक्ष है। अभी जब द्वैत भ्रम अपरोक्ष है तो अद्वैत जो बोध है वो तो हमारे लिए परोक्ष हो गया। केवल सुना है कि अद्वैत भी है, सदैव स्वमेदम अग्र आसित करके प्रक्रिया से फिर समझाया जाएगा। आत्मा व इदम अग्र आसित, एकमात्र आत्मा ही था, अब उससे द्वैत की उत्पत्ति हुई, ये प्रक्रिया में बताया जाएगा। लेकिन जब जिस समय हमें द्वैत का भ्रम प्रत्यक्ष मालूम पड़ रहा है, देख रहे हैं कि द्वैत है, शरीर इंद्रिय गोचर है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो उस समय वो ब्रह्म तो हमारे लिए परोक्ष ही होगा कि नहीं? तो जो ब्रह्म का ज्ञान है, अद्वैत का जो ज्ञान है, वो हमारे लिए परोक्ष है। जो द्वैत है वो तो हो गया अपरोक्ष, और जो अपरोक्ष होना चाहिए वो हो गया परोक्ष। जो ब्रह्म आत्मा रूप से अपरोक्ष होना चाहिए वो तो परोक्ष है, और जो परोक्ष होना चाहिए था, द्वैत जगत बाधित होना चाहिए था, वो हमारे सामने ब्रह्म काल में अपरोक्ष हो रहा है। तो यहां पर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? तो यहां बोलते हैं अविरोधित्वात, इनका परस्पर दोनों का विरोध नहीं है। अद्वैत परोक्ष अद्वैत का, और जो अपरोक्ष द्वैत है, इन दोनों का परस्पर विरोध नहीं है। अविरोधित्वात श्रद्धावत पुंस शास्त्रात परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते, इसलिए विरोध नहीं होने के कारण जिस समय हमें ये द्वैत का जो भ्रम हो रहा है, द्वैत साक्षात अपरोक्ष करके मालूम पड़ रहा है, और वो जो ब्रह्म है वो परोक्ष करके मालूम पड़ रहा है, परंतु हमारे भीतर एक बहुत बड़ा तत्व है, वो है श्रद्धा। क्योंकि हमने शास्त्र के ऊपर श्रद्धा की है, इसलिए ब्रह्म है तो परोक्ष ही इस समय ब्रह्म काल में, लेकिन ब्रह्म काल में भी व्यक्ति श्रद्धा तो कर ही लेता है। सामने काला काला टेढ़ा मेढ़ा कुछ दिखाई पड़ा, भ्रम हुआ कि ये सर्प हैं, लेकिन हमारा घनिष्ठ मित्र हमारे साथ में चल रहा है। जो ही हम डरे, कहा क्यों डर गए, अरे सांप है। बोले नहीं नहीं सांप नहीं है, ये रस्सी पड़ी हुई है। और जब उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा भय जाता है कि नहीं, भ्रम तो था हमें लेकिन हमारे साथी के ऊपर पर हमें विश्वास है, इसलिए अभी प्रकाश करके हमने नहीं देखा है वहां पर कि हकीकत में ये रस्सी ही है क्या। सर्प भी तो हो सकता है, लेकिन दूसरे पर हमें विश्वास है कि ये कह रहा है कि सर्प नहीं है तो नहीं है। हमारे मित्र पर हमें विश्वास है। ठीक इसी प्रकार से भगवती श्रुति जो हमारी परम हितेशिनी है, उस शास्त्र के ऊपर हमें विश्वास है। श्रद्धावत पुंसाम शास्त्रात प्रोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते। जैसे हम अपने मित्र की बात पर विश्वास कर लेते हैं भ्रमकाल में भी, इसी प्रकार से ये द्वैत जो भ्रमकाल है, जहां सारा संसार द्वैत जगत अप्रोक्ष करके मालूम पड़ रहा है, उस समय भी जो हमें शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा के बल पर उस शास्त्र से प्रोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते। ब्रह्म का प्रोक्ष ज्ञान तो हो ही जाता है। प्रश्न ये किया था कि उसका प्रोक्ष ज्ञान भी कैसे होगा, वो तो भ्रम में पड़ा हुआ है। बोले ठीक है, भ्रम में पड़ा हुआ है व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसको प्रोक्ष ज्ञान तो शास्त्र से हो ही जाता है, क्योंकि शास्त्र के प्रति उस भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति की भी श्रद्धा है। हां इतना जरूर है कि भ्रम भी है और बताने वाले पर विश्वास भी नहीं है। समझो नहीं और दूसरे की मानो नहीं, उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन समझो नहीं और कोई समझावे तो तैयार हूं, उसके लिए ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हो सकता है, क्योंकि शास्त्र समझा रहा, श्रुति समझा रही है। श्रद्धावत पुंसाम शास्त्रात प्रोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते। इसलिए क्योंकि जो अप्रोक्ष द्वैत है उसका और परोक्ष जो ब्रह्म तत्व है उनका ज्ञान का भेद नहीं होने के कारण श्रद्धा के बल पर शास्त्र के कहे जाने पर प्रोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। एव इतिहा है, वो ही जाता है ज्ञान, एव लगा दिया। हाँ फिर श्रवण मनन और निधिध्यासन से फिर अप्रोक्ष हो जाएगा ना। शास्त्र को श्रवण करने की तो श्रद्धा होनी चाहिए, फिर युक्ति संगत मनन करेंगे, तर्क से समझेंगे, निधिध्यासन होगा तो फिर अप्रोक्ष भी हो जाएगा। ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम श्रद्धालो शास्त्र दर्शिन अप्रोक्ष द्वैत बुद्धि ही परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत। ब्रह्म मात्रम विज्ञेयम श्रद्धालो शास्त्र दर्शिन। कहते हैं जो श्रद्धालु पुरुष हैं, श्रद्धा पूर्वक शास्त्र का दर्शन करने वाला, श्रद्धा एक महत्वपूर्ण साधन बताया है वेदांत में, इसलिए बड़ी महिमा बताई। सांदोग्य श्रुति में श्वेत केतु को जब महावाक्य का उपदेश दिया और बार 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 वो तर्क करते जा रहा है तो आखिर में गुरु को कहना पड़ा श्रद्धस्व सौम्य इति, प्यारे थोड़ी श्रद्धा तो कर, तर्क की तो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। व्यास जी महाराज ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं तर्का प्रतिष्ठानाथ, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप कोई तर्क दो, दूसरा उसको अपने तर्क से काट देगा। तर्क का काम ही है कर्तन करना, उल्टा कर दो उसको, तर्क कह को इधर और तय को उधर ले गो तो क्या बनेगा, कर्तन करना, काटना कैंची की तरह। कैंची का काम काटना ही होता, तर्क का काम काटना ही होता है। तो उसकी कोई स्थिति नहीं, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। इसलिए पहले चीज कहीं न कहीं तो श्रद्धा करोगे, तो जो श्रद्धालु पुरुष हैं, श्रद्धा युक्त वो शास्त्र का दर्शन कर रहा, शास्त्र को देख रहा है। एक तर्क से शास्त्र पढ़ना और एक श्रद्धा से शास्त्र पढ़ना, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तर्क से शास्त्र को पढ़ने वाले व्यक्ति कि जब तर्क में वो युक्ति नहीं आएगी जो शास्त्र में दिया जा रहा है, वो कहेगा शास्त्र गलत है, वो शास्त्र में भी खामी कमी देखने लग जाता है। और श्रद्धावान पुरुष जब शास्त्र को देख रहा है और उसकी तर्क में नहीं भी उतर रहा है, तो वो यही सोचेगा कि मेरी बुद्धि की कमजोरी है, इस बात को मैं समझ नहीं रहा हूं, किसी विज्ञ पुरुष के माध्यम से जानूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर श्रद्धा की बजाय तर्क को यदि प्रधान कर दिया जाए तो फिर उसको समझाना संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं श्रद्धालो शास्त्र दर्शिन ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम्। ब्रह्म का जो परोक्ष ज्ञान है, ब्रह्म मात्र का अर्थ हुआ केवल ब्रह्म है, इतना परोक्ष ज्ञान। वो परोक्ष ज्ञान अच्छी तरह से किसको होता है, जो शास्त्रवेत्ता श्रद्धा युक्त शास्त्र से जान रहा है। अप्रोक्ष द्वैत बुद्धि, प्रोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत, अप्रोक्ष जो द्वैत बुद्धि है उसको यद्यपि सामने प्रत्यक्ष तो द्वैत ही दिखाई पड़ रहा है, उसके बुद्धि में भी बैठा हुआ कि द्वैत जगत है महाराज, सत्य देख रहा हूं, आंख खुली तब से जगत को देख रहा हूं, ऐसे द्वैत के प्रति जो अप्रोक्ष बुद्धि हो रही है कि प्रत्यक्ष देख रहा हूं सामने है, ऐसा व्यक्ति भी श्रद्धा युक्त यदि शास्त्र का दर्शन करता है तो ब्रह्म के अस्तित्व को, प्रोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। प्रोक्ष अद्वैत बुद्धितनुत, जो अद्वैत हैं अभी उसके लिए परोक्ष हैं, फिर भी इतना ज्ञान उसको हो जाएगा। जो ब्रह्म है वो उसके लिए परोक्ष रूप से है, फिर भी इतना ब्रह्म है इतना परोक्ष ज्ञान तो हो ही जाएगा। क्यों? ये जो ज्ञान है ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान और जगत का अपरोक्ष ज्ञान, ये दोनों का क्या है, अनुत, विरोध नहीं है, निवारण नहीं करता है एक दूसरा, एक दूसरा को मिटाने का काम नहीं करता है। दोनों का अपना अपना काम है। भ्रांति जगत को सत्य करके दिखा रही है, तो श्रद्धा युक्त जो शास्त्र का ज्ञान है वो परमात्मा को है करके बता रहा है, इसमें विरोध कहां हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष जगत सत्य दिख रहा है, लेकिन जो अद्वैत तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको हमारा शास्त्र बता रहा है, इससे अप्रोक्ष ज्ञान तो हो ही जाएगा, दोनों का विरोध नहीं है। अप्रोक्ष द्वैत बुद्धि यत, प्रोक्षाद द्वैत बुद्धि अनुत, अतो ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम् इति योजना। इसलिए प्रश्न उठा था कि उसको प्रोक्ष ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, तब कहा नहीं नहीं, प्रोक्ष ज्ञान संभव है, क्योंकि दोनों का विरोध नहीं है, अप्रोक्ष द्वैत का और प्रोक्ष अद्वैत का। ये शब्द जाली ही और कुछ नहीं है, परोक्ष द्वैत अद्वैत और अप्रोक्ष द्वैत। हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि अप्रोक्ष तो ब्रह्म ही है, अरे ब्रह्म काल में जगत अप्रोक्ष दिखाई पड़ रहा है, और जो वस्तुतः अपरोक्ष है वो तो परोक्ष की भांति दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी उसका विरोध नहीं है। ये मत कहना कि परोक्ष ज्ञान कैसे हो जाएगा, उसको तो अद्वैत जो है, क्या द्वैत है वो अपरोक्ष हो रहा है, तो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान कैसे होगा। बोले हो जाएगा, उनका दोनों का कोई विरोध नहीं है। अपरोक्ष ब्रह्मस्य परोक्ष सम्यक ज्ञान अविरोधित्वे दृष्टांतम आह। अब इस बात को एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं कि जो अप्रोक्ष ब्रह्म है उसको और परोक्ष जो सम्यक ज्ञान है उसका अविरोधित्वात्, एक दूसरा एक दूसरे का विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे की बात नहीं काटता, दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। उसको समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं, ये ऐसे चलेगा ना, उच्चारण करो श्लोक का। अप्रोक्ष शिला बुद्धेर न प्रोक्षेशताम नुदेत प्रतिमा दिशो विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते। अप्रोक्ष शिला बुद्धि न प्रोक्ष ईशताम नुदेत। अच्छा भाई, हमारे सामने प्रतिदिन घर में लोग पूजा करते हैं, कोई शिवार्चन करते हैं तो कोई विष्णुवार्चन करते हैं, भगवान की जो पूजा करते हैं किसमें करते हैं, पिंड के माध्यम से करेंगे, सालग्राम के माध्यम से करेंगे, विष्णु की सालिग्राम करेंगे तो शिव जी की पिंड में करेंगे, नर्मदेश्वर के आदि के रूप में करेंगे। अब विचार करके देखो हमारे सामने क्या है, पाषाण है, स्फटिक पत्थर हो, नर्मदेश्वर हो, कुछ भी हो, पत्थर तो है ना। तो कहते हैं कि अप्रोक्ष शिला बुद्धि, अप्रोक्ष तो पत्थर ही है, बिल्कुल सामने पत्थर है, पर क्या हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं? कतई पत्थर की पूजा नहीं करते। पहाड़ पूजे हरि मिले तो पूजो में पहाड़, कबीर बोल दिए, जबकि वो पत्थर अपरोक्ष है, सामने है हमारे, प्रत्यक्ष है। और उधर जो जिस शिव की या जिस विष्णु की हम पूजा कर रहे हैं वो हमारे लिए परोक्ष है। चतुर्भुज कहां दिखाई पड़ रहे हैं, कर्पूर गौरव कहां दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो परोक्ष है। तो जिस प्रकार से शिव विष्णु आदि की प्रतिमा में हम पूजा करते हैं उसमें अपरोक्ष प्रतिमा आदि होती है, और जिसकी पूजा करते हैं वो शिव विष्णु हमारे लिए परोक्ष होता है, दोनों का विरोध कहां है? नहीं है ना विरोध है। उसको यही समझा रहे हैं कि जो जगत का भ्रम काल में अपरोक्ष ज्ञान है उसका, और जो शास्त्र चिंतन में परमात्मा का ब्रह्म मात्रम जो परोक्ष ज्ञान है, उन दोनों ज्ञानों का विरोध नहीं है। इसलिए जिस समय ब्रह्म है उस समय भी इतना ज्ञान हो सकता है कि ब्रह्म है, सत्य तत्व है। सच्चाई से देखो तो लगभग दुनिया के 95% लोग तो इस बात को स्वीकार करते ही हैं कि जो सारा का सारा संसार है ये तो अपरोक्ष ही है सबके सामने, लेकिन सब इस बात को मानते हैं कि कोई न कोई एक अचिंत्य शक्ति है। अब ठीक है, उसकी कल्पना अलग अलग है, कोई किस रूप में मान रहा है, कोई किस रूप में मान रहा है, जितने भी क्रिश्चियन है उस सत्ता को स्वीकार तो करते ही है, जितने भी मुस्लिम है उसको स्वीकार करते ही है, जितने भी सनातनी उसको स्वीकार करते ही हैं, सर्वम शून्यम शून्यम वाले तो कम ही होंगे। तो कोई न कोई सत्ता तो है। अब उस सत्ता को परोक्ष रूप से जान रहे इतना ठीक है, है कोई, है कोई है जो सूर्य को प्रेषण दे रहा है, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु आदि परिवर्तित कर रहा है, चक्कर चल रहा है, कोई है सत्ता जो चला रही है, खुदा कहो मालिक कहो उसको, ईश्वर कहो उसको, ब्रह्म कहो उसको, परमात्मा कहो, है तो सही, स्वीकार तो कर रहे हैं, कहां विरोध कहां है? प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से द्वैत जगत दिखाई पड़ रहा है, और परोक्ष रूप से हमको उसका ज्ञान है, है किसने कहा कैसे है तुमने कब कहा हमको कोई भी पूछ ले कि कौन जानता है बोले भगवान जाने हमको पता नहीं तो कम से कम भगवान है इसको तो पता वो पूछ ले कि चलो तुम्हारे भगवान से पूछ करके आएंगे एड्रेस बताओ कहां है वो तब सोचना पड़ जाएगा कि वो कहां बैठ करके जान रहा है अब तब आपको खोजना पड़ेगा तो लगेगा कि वो तो भीतर ही था जिसको ढूंढा था नजरों से दूर दूर आंखों में छुपा था मुझे मालूम न था हाँ? दूर दूर खोज रहे थे और था भीतर ही कुछ पता ही नहीं था
तो,
हाँ जब मैंने मुझे पाया तो मैं ही निकला कि मैं ही तो था इसलिए अप्रोक्ष द्वैत बुद्धि परोक्ष अद्वैत बुद्धि तनु जो अप्रोक्ष द्वैत बुद्धि है वो परोक्ष जो अद्वैत ब्रह्म तत्व है उसकी विरोधी नहीं है अप्रोक्ष शिला बुद्धि न परोक्ष का इष्टाम नुदेत जिस प्रकार से जो अप्रोक्ष शिला है हमारे सामने पत्थर बुद्धि है परंतु वहां पर भी जो ईश्वर का अप्रोक्ष ज्ञान है उसका निवारण नहीं होता है व्यवहार में तो उस शिला में ही पूजन कर रहे हैं हम लोग पर शिला में शिला की पूजा नहीं कर रहे हैं शास्त्र वाले कहेंगे हम तो शिला उच्छिन्न जो चैतन्य है उसकी पूजा करते हैं जो मूर्ति पूजा में ईश्वर का विरोध करते हैं तर्क से आप पूछने लग जाओगे तो उनको भी मुंह बंद करना पड़ेगा मूर्ति में ईश्वर पूजा करने वाले का विरोध करने वाले लोग कहते हैं तुम्हारी मूर्ति में शक्ति होती तो चूहे को भगा दिया होता उनसे पूछो कि चलो फिर हम उस ईश्वर की पूजा कर लेते हैं जहां मूर्ति को छोड़ देते हैं कहां ईश्वर यही कहना पड़ेगा कि ईश्वर तो व्यापक तत्व है ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है सर्वांतर है व्यापक तत्व है और जब वो कहते हैं कि ईश्वर व्यापक तत्व है तब जिस मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं आप यह सिद्ध कर दीजिए कि वो ईश्वर उस मूर्ति में नहीं है व्यापक है ना तो जिस मूर्ति में ईश्वर की पूजा करते हैं आप यह सिद्ध कर दीजिए कि मूर्ति के अंदर ईश्वर नहीं है अब जब यह कहेंगे कि मूर्ति में नहीं तो व्यापक कैसे हुआ फिर तुम्हारा और व्यापक है तो मूर्ति में क्यों नहीं अविचारते लोग उसका विरोध कर देते हैं हम लोग करते ही व्यवहार में देखो पूजा कर रहे हैं पूजा का माध्यम मूर्ति है जो मूर्ति हमारे लिए अपरोक्ष है सामने है उस अपरोक्ष मूर्ति में हम अपरोक्ष ईश्वर की पूजा करते हैं ये उदाहरण देकर के बताया कि दोनों का कोई विरोध नहीं है जो अपरोक्ष द्वैत है और परोक्ष जो ब्रह्म है अद्वैत उन दोनों ज्ञान का कोई विरोध नहीं है विरोधाभावम एव उदारित्य दर्शयति प्रतिमादिषु इति इसीलिए यहां पर विरोधाभाव का उदाहरण देकर के यही दर्शाया गया है प्रतिमादिषु इति जो प्रतिमा है उनमें सब जगह देख लो प्रतिमा तो विचार करके देखो तो मिथ्या है लेकिन वो मिथ्या पदार्थ द्वैत पदार्थ अप्रोक्ष है और प्रोक्ष की उपासना होती है भागवत में देखो गिरिराज धारण की जो भगवान की लीला आती है उसके पीछे उद्देश्य क्या है पर्वत को एक जड़ समझा जा रहा था तो भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर के यही तो सिद्ध किया है कि इसको जड़ मत समझना इसकी भी अवचिन्न आत्मा मैं बैठा हुआ हूं तो गिरिराज की पूजा करने में आरोगने के लिए स्वयं प्रकट हो गए जैसे लकड़ी से लकड़ी का पत्थर से पत्थर का लोहे से लोहे का घर्षण करते हैं तो उसी के अंदर की आग वहीं पर प्रकट हो जाती है बाहर से नहीं आती ऐसे गिरिराज की जब पूजा होने लगी तो उसकी जो आत्मा भूत भगवान है वहीं पर प्रकट हो गए पर भोग को आरोग लिया तब सारे ग्वालों को समझ में आई जिसकी पीठ थपथपा रहे हैं कन्हैया की, अरे कन्हैया ये तो हमको पता ही नहीं था कि साक्षात भगवान इस पर्वत पर बैठ करके हमारे लगाए गए भोग को स्वीकार कर लेंगे। अब उनको ये भी समझ में नहीं आ रही अभी तक, जिसकी पीठ थपथपा रहे हो वही तुम्हारी आत्मा है, ये समझ में नहीं आ रही है। पर इतना तो समझ में आ गया ना कि जो हमारे सामने पर्वत था अपरोक्ष रूप से, उसके भीतर भी परोक्ष जो ईश्वर है, भगवान है, वो दिव्य शक्ति वो बैठी हुई है, इतना ज्ञान तो हो ही गया, उसमें विरोध कहां आया? कोई विरोध नहीं है। प्रतिमा में सर्वत्र यही सिद्धांत चलता है, जहां मूर्ति में भगवान की अपने इष्ट की पूजा की जाती है, चाहे कागज में तस्वीर में भगवान की गुरु की पूजा करो और चाहे मूर्ति में करो, जड़ पदार्थ के माध्यम से जो जड़ जगत प्रत्यक्ष हो रहा है, अपरोक्ष हो रहा है, उसमें जो परोक्ष भूत हमारा आराध्य है उसकी हम लोग पूजा करते हैं, कोई विरोध नहीं है। अब हमारा आराध्य परोक्ष रूप है क्योंकि सामने नहीं है, और जो सामने है वो अपरोक्ष है, वो भ्रम मात्र है। तो उस भ्रम का और उस ज्ञान का, यद्यपि भ्रम और ज्ञान, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रहते, लेकिन यहां एक ऐसी जगह है जहां परोक्ष ज्ञान में और इस भ्रम में कोई विरोध नहीं है, भ्रम भी रहता है और ज्ञान भी रहता है। अद्वैत है दृश्य मात्र, ये भ्रम है, और ब्रह्म है वो परोक्ष रूप है, ये ज्ञान है, अद्वैत बोध नहीं है, ठीक है, जीवात्मक के बोध नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है ब्रह्म का, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान का और द्वैत ब्रह्म का विरोध नहीं है, इस बात को यहां तक सिद्ध किया है। और आंख के सामने क्या है, आंख के सामने क्या है, विचार के सामने को छोड़ दो, आंख के सामने की बात करो। विचार के सामने हमारा इष्ट है, लेकिन आंख के सामने पाषाण है, अपरोक्ष पाषाण है, अक्षणा प्रति, बिल्कुल आंख के सामने है ना।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।